হরিতে সাথি দেহনাথ যথায়থ দেহনাথ তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হাত অপরাধ হাত গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাস প্রেম কৃষ্ণ কৃপা বিন্দু কবে হে ন কৃপা লভিয়ায় জানা কবে হে ন কৃপা লভিয়ায় জানা কৃতার্থ হইবে নাথ কৃতার্থ হইবে নাথ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন কর মোরে সাথ কর মোরে গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসে ত্রেন কৃপা বিন্দু দিয়া করো এ দাসে ত্রেন যোগিতা বিচারে কিছু নাই পাই যোগিতা বিচারে তোমার করুণা সার তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব প্রাণ না রাখিব কৃপা বিন্দু দিয়া করো দাস কৃপা বিন্দু দিয়া করো দাস ক্ষা গুরুদেব 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 জয় গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব 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 Namadhava Punya Vihari Jaya Rama Namadhava Punya Vihari Gopi Jana Vallava Girivar Dhari Jaya Gopi Jana Jashodanandan Braj Jan Ranjana Jashodanandan Yamuna Tira Vanchari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava
नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय श्री श्री षड़ गोस्वामी गण की जय शिला गुरु परंपरा की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहियं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामयीं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पदां सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। जिनको कठिन हो रहा हो थोड़ा आगे आ सकते। देखो हम सभी संसार में पतित जीव हैं और अनादि काल से पड़े हुए हैं। अनादि काल से हम सभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुखों से पीड़ित हैं। हर व्यक्ति इन दुखों को सुलझाना चाहता है, समाधान करना चाहता है, लेकिन दुनिया में इन दुखों का कोई उपाय नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि इनका उपाय ही नहीं है। इनका उपाय है वो भगवत गीता में भगवान ने दिया है। ये संसार में भगवान के उपाय के अतिरिक्त अगर हम कोई दूसरा उपाय अपनाते हैं तो हम केवल समय को नष्ट कर रहे हैं इस आशा में कि शायद हमें कोई उपाय मिलेगा, लेकिन संसार में कोई उपाय है ही नहीं। बाद में पछताना ही पड़ेगा, बाद में एहसास होगा कि ये उपाय पहले पता होता तो हम पहले कर लेते, लेकिन ये उपाय भगवान कृपा करके हमें पहले से ही बता रहे हैं। भगवत गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं, गीता में भगवान ने कहा, दैवी हे श्याम गुणमयी मम माया दुरतया, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायाम एताम तरन्ति ते, मायाम एताम तरन्ति ते। कोई व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो मेरी जो दुर्जय माया है, जिसको के पार कर पाना बहुत कठिन है, असंभव है, क्योंकि माया की शक्ति अनंत है, अनंत की शक्ति से लड़ने के लिए अनंत की ही शक्ति चाहिए, अनंत शक्ति से लड़ने के लिए सीमित शक्ति काम नहीं कर सकती। तो हम सभी सीमित लोग हैं, हम संसार में बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके लड़ने का प्रयास करते हैं, धन दौलत लेकर के इकट्ठा करके लड़ने का प्रयास करते हैं इस माया शक्ति से, जो कि तीन प्रकार के कष्ट हमें सदा देती है। उसको कहते हैं अधि भौतिक कष्ट, अधि आध्यात्मिक कष्ट और अधि दैविक कष्ट। अधि आत्मिक कष्ट उसको कहते हैं जो हमारे शरीर और हमारे मन से मिलता है। दुनिया में हम लोग कितने इस कष्ट से पीड़ित, हमारा ही शरीर बार बार कभी भूख से हमें पीड़ित कर देता है, कभी प्यास से पीड़ित कर देता है। संसार में हम किसी को भी स्प्राइट पीते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर प्यास लग जाती है, हमें सोचते हैं हमें भी कोई स्प्राइट ला कर दे। किसी को फ्रूटी पीते हुए देखते हैं तो हमें प्यास लग जाती है। रास्ते में चलते चलते कोई नारियल पानी पीता है तो हमारी इच्छा हो जाती है हमें भी नारियल मिल जाए तो। शरीर में कितनी चीजों की प्यास है हमारे, शरीर में चीजों को देख देख करके भूख लग जाती है, ये भी खाना ये भी खाना, चाहे पेट में जगह है या नहीं है। हमारा शरीर ही अनेकों डिमांड्स रखता रहता है, हमारा मन निरंतर चंचल होने के कारण अर्जुन जैसे भक्तों ने भी इस बात को अंगीकार किया, प्रभु मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूं लेकिन मैं मेरे मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। हम सभी संसार में एक दूसरे को मन की इच्छा की पूर्ति करते हुए देखते हुए अंदर कितनी सारी लालसाओं से भर जाता है। किसी के हाथ में घड़ी देखा तो हमारा मन करता है हमें घड़ी मिल जाए, किसी के पैरों में बढ़िया जूते देखे हमें इच्छा हो जाती, किसी को गाड़ी घोड़े में घूमते हुए देखते तो हमारी इच्छा हो जाती। कितना संसार में विविधताएं हैं जिनकी कि हमें भूख और प्यास निरंतर लगी रहती है, हमारा मन निरंतर चिंताओं से ग्रसित रहता है। दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं निश्चिंत हो गया, कोई कह ही नहीं सकता। ये अधि आत्मिक कष्ट है, अधि भौतिक कष्ट जो दुनिया के दूसरे जीवों से प्राप्त होते हैं, कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी बरसात में कीड़े आ जाते हैं, लाइट चालू करो अनेकों कष्ट। फिर अति दैविक कष्ट जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, ये सब माया के कष्ट। इन सब माया के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायाम एताम तरन्तिते। लेकिन अनादि काल से भटकता हुआ जीव, उसको ज्ञान ही नहीं कि भगवान की शरण में कैसे जाया जाए, उसके लिए स्वयं भगवान हमें भगवदगीता जैसे शास्त्रों के माध्यम से इस चीज का ज्ञान देते हैं कि आप किस प्रकार से मेरी शरण में आ सकते हैं। फिर भी हम उस ज्ञान को अपने मनगढ़ंत विचारधारा से तोड़ मरोड़ करके जो अच्छा लगता है लेते, नहीं लगता नहीं लेते। यतो मत ततो पथ, जैसा मत होता है वैसे रास्ते बना लेते, उस समस्या का समाधान करते हुए भगवान अपने पार्षदों को यहाँ भक्त रूप में भेजते हैं, जिससे वो लोग हमें भक्ति करके दिखाते हैं। वो कहते हैं एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। अगर कहीं उदाहरण मिल जाए तो आदमी देख करके बहुत जल्दी सीखता है चीजों। जैसे पहले टेलीविजन वगैरह नहीं था तो चीजें इतनी दिखाई नहीं देती थी संसार में, लेकिन जब टेलीविजन मोबाइल आ गया तो बहुत सारी गंदगी उसको आंखों से दिखाई देती, उस गंदगी को बहुत जल्दी छोटे छोटे बच्चे सीख जाते। ऐसे ही भक्ति सिखाने के लिए भी हमें भगवान ने आचार्यों को दिया। उन आचार्यों में ये 6 गोस्वामी हैं जो बड़े प्रधान आचार्य कहलाए, जिनमें कि सनातन गोस्वामी का जो चरित्र चल रहा है, सनातन गोस्वामी को संबंध के आचार्य कहा जाता है। कौन से आचार्य? संबंध के आचार्य, जिसमें कि सबसे पहले हमारा भगवान के साथ नाता क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, और भगवान के साथ हमारा नाता क्या है, संबंध क्या है, इसलिए इन्हें संबंध के आचार्य कहा जाता है। इन्होंने मदन मोहन भगवान को प्रकट करके दिया। मदन मोहन भगवान संबंध के भगवान कहे जाते। आज संसार में मदन माने कामना में हम डूबे हुए जीव हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। मदन माने काम, कामदेव का नाम मदन भी है, तो हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में लगे हुए, तो कामनाओं की पूर्ति को भी जो मदन मोहन भगवान जो मदन को भी मोहित कर लें, उनका नाम मदन मोहन है। जब हमारा भगवान से संबंध जुड़ेगा तो ही हम संसार की काम वासना को छुड़ा पाएंगे। अगर भगवान से हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा तो हम संसार की कामनाओं से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसका ज्ञान कौन कराते हैं? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथों का लेखन किया है। उन सभी ग्रंथों में हमें संबंध के बारे में जानकारी देते। सनातन गोस्वामी का स्वयं जीवन चरित्र इतना दिव्य है, जिसका चरित्र काम कई दिनों से वर्णन कर रहे हैं। कल कहां तक पहुंचे थे हम? ये बता सकता है कल क्या बताया था? बताई आगे पाठ पीछे सब पाठ क्या? हाँ, भक्ति रस के बारे में बताया था, और क्या बताया था? सनातन गोस्वामी की लीला में क्या बताया था? कितनी निष्ठा के साथ वो साधना करते थे, विशेष रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा आदि, तो उसको लेकर के गिरिराज जी का क्या दिया था उनको? शिला दी थी, तो कौन बताएगा इसको? दिमाग में याद आना चाहिए ना, गिरिराज जी का उनको शिला दिया, और वो नित्य प्रति शिव जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, रामेश्वर में जाकर के शिव जी के दर्शन करते थे, है कि नहीं? रामेश्वर में करते थे, रामेश्वर में दर्शन करते थे शिव जी के, या गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते थे? वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, उनका दर्शन करते थे। रामेश्वर तो रामेश्वर में पड़ता है, श्रीलंका के पास। ध्यान ही नहीं रहता आप लोगों का, बस आकर के बैठ जाने का और उठ के झाड़ के चले जाने। कौन से भगवान के दर्शन करते थे? गोपेश्वर महादेव के दर्शन। फिर क्या हुआ? वो तो शिला दी थी, गोपेश्वर महादेव ने कैसे कृपा किया उनके ऊपर? हाँ, रहते थे ना उधर, जाते थे, फिर क्या हुआ? गोपेश्वर महादेव ने क्या लीला की? कहाँ? इधर मत आया करो तो कहाँ जाया करो फिर? कहीं आने का ही नहीं? अरे बनखंडी में भगवान प्रकट हो गए थे तो बनखंडेश्वर महादेव कहलाने लगे। बनखंडेश्वर महादेव कौन से महादेव? बनखंडी के महादेव। ध्यान ही नहीं आप लोगों का आज इतने दिनों बाद, वैसे भी पता है आपको, पूछते तो है नहीं, तो क्या इतना ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है? तो शिव जी ने भी कृपा किया। देखो कैसे भगवान के भक्तों लोगों की भक्ति से प्रभावित होकर के सब कृपा करते। सनातन गोस्वामी ने बहुत सारी जगह इस भक्ति रस का आस्वादन किया। वो तो भक्ति रस में डूबे हुए महात्मा थे, निरंतर भजन करते रहते थे। ये ऐसे ही संभव नहीं हो सकता। जब तक कोई व्यक्ति संबंध ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं समझ लेगा, उसका भगवान से नाता तब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको इस रस का आस्वादन नहीं हो सकता। इसलिए सनातन गोस्वामी की कृपा हमारे लिए कितनी अनिवार्य है, हम विचार कर सकते। सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र हमारे लिए कितना आवश्यक है। सनातन गोस्वामी का भी हमें जीवन चरित्र ही नहीं पता चल रहा है तो सनातन गोस्वामी के ग्रंथों का हम आश्रय कब लेंगे? लेंगे क्या? सनातन गोस्वामी के ग्रंथों को कौन पढ़ेगा फिर? कब पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? इतने सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ में, हम कभी आश्रय ही नहीं लेंगे। जब आश्रय नहीं लेंगे तो हमारा संबंध कौन जोड़ेगा भगवान के साथ? इसलिए सनातन गोस्वामी कौन से आचार्य कहलाते हैं? संबंध आचार्य कहलाते हैं, हमारे संबंध को भगवान के साथ जोड़ने वाले आचार्य, संबंध ज्ञान देने वाले हैं वो। तो सनातन गोस्वामी कितने महान वैष्णव हैं, ना केवल वो शिवजी का इतना सम्मान कर रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, प्रतिदिन शिवजी प्रकट हो रहे हैं, शिवजी भी उनका कितना सम्मान करते हैं। जब सनातन गोस्वामी जगह जगह पे भजन करते थे, कभी नंदगांव में तो कभी वृंदावन में तो कभी महावन में, सनातन गोस्वामी एक बार गिरिराज जी के परिक्रमा लगाते हुए वहां चकलेश्वर महादेव हैं। उनकी कोई ऐसी अटैचमेंट तो थी नहीं, चलो चलो भाई घर चलो वापस, घर हमारा कहीं निश्चित जगह पर घर है वहां जाएंगे। वो तो एक रात कहीं, एक रात कहीं, एक रात कहीं, किसी भी जगह पर कहीं आसक्त नहीं थे। भगवान के ऊपर निर्भरता इसको कहते। कोई उनको चिंता ही नहीं थी कहाँ से आएगा, कहाँ से खाएंगे, कैसे जीवन निर्वाह करेंगे। हाँ, जबकि दूसरे जीवों की चिंता करते थे। इसको कहते हैं अलग अलग लक्षणों वाले भक्त लोग कहते हैं। सबसे प्राथमिक लक्षण होता है भक्ति रस के आस्वादन करने वाले का, कौन सा लक्षण बताया था? निष्ठा। कौन सा लक्षण बताया था? निष्ठा। ये शांत रस का लक्षण है निष्ठा। जो भगवान का सेवक बनना चालू हो जाता है उसमें दास्य रस का अनुभव आता है, जिसमें उसको सेवा करनी होती है। यदि जीवन में सेवा नहीं है तो दास्य रस है ही नहीं, केवल नाम के दास बन गए हम, जैसे सचिनंदन दास बन गए। जीवन में शरीर से सेवा है नहीं, जब हम सेवा नहीं करते तो हम कौन से दास बन जाते हैं? नाम के दास। तो दास्य रस के हम अनुभव ही नहीं हो सकते, दास्य रस का हमें कोई अनुभव नहीं प्राप्त होगा। कब तक? जब तक कि हम सेवा ना करें। सेवा वाले व्यक्ति में निष्ठा होगी होगी, सेवा वाले व्यक्ति में निष्ठा अपने आप जाएगी, क्योंकि ऊंचे रस में नीचे वाले गुण तो आ ही जाते हैं अपने आप। ये ऐसे हैं जैसे माँ से 10 रुपया मिला, पिताजी से भी 10 रुपया मिल गया तो कितने हो गए? 20 रुपये। ये नहीं पिताजी से 10 रुपया मिला तो पहले वाला नहीं रहा, समझ रहे हो? बाबू जी से 10 रुपये मिले तो कितने हो गए? 30। चाचा से 10 रुपया मिला तो कितना हो गया? 40। भाई से भी 10 रुपया मिला तो कितना हो गया? 50। तो सबसे इकट्ठा होकर के कुल मिला के कितना हो गया? 50 रुपया। तो जिसके पास 50 रुपया है, पहले वाला 10 है कि नहीं? 10 रुपया है। ऐसे ही जिसके पास सेवा रस प्राप्त हो गया, दास्य रस का जो आस्वादन कर रहा है, उसके पास निष्ठा अर्थात शांत रस का गुण तो होगा ही होगा। उससे ऊपर है साख्य रस का गुण। साख्य रस में क्या होता है? उसका असंकोच उसका गुण होता है। कौन सा गुण होता है? असंकोच, जिसमें संकोच नहीं होता कुछ। इतनी प्रियता आ जाती है, इतना आदान प्रदान आ जाता है कि उसमें उसके सारे संकोच मिट जाते। जैसे कई बार हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो संकोच होता है कि नहीं? उठने बैठने में संकोच होता है कि नहीं? बोलचाल में संकोच होता है कि नहीं? खान पान में संकोच होता है कि नहीं? पहनने ओढ़ने में, हमारे प्रत्येक व्यवहार में, आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है? संकोच होता है, जिसमें ऊपर से हम कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होता है। जब हमारे चित्त में असंकोच भाव आ जाए, जिसमें इतनी सरलता आ जाए कि हम दुश्मन को भी बातें ना छुपा सकें, जब ऐसा असंकोच भाव आता है, विशेष रूप से भक्तों के साथ, विशेष रूप से भक्तों के साथ अपने हृदय की बातों को व्यक्त करने में कोई अंदर फीलिंग ऐसी ना हो, मैं इसके सामने कैसे व्यक्त करूं, इतना प्रीति का संबंध जुड़ जाए, जिसमें सब एक दूसरे के साथ जैसे भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते कूदते हैं, उसका बड़ा आनंद भगवान उठाते हैं। छोटी छोटी लीलाओं में भगवान के साथ इतना असंकोच है उनका, और भगवान का भी उनके साथ उतना ही असंकोच है। पक्षी लोग ऊपर उड़ते रहते हैं, उनकी परछाई में सारे ग्वाल वाल सखा लोग ये परछाई में भागते हैं और कहते देखो देखो मैं भी इसके बराबर उड़ रहा हूं। और कहीं किसी बगुला को देख लेते हैं तो सभी सखा लोग सुबल आदि सब कहते हैं देखो भाई इससे भजन करना सीखो, भजन ऐसा करना चाहिए। सब बगुले की तरह एकदम से बैठ जाते हैं और एकदम ध्यान लगा करके भगवान का भजन करने का चेष्टा, देखो भाई भजन ऐसे करना चाहिए। कभी हंसों को देखते हैं तो हंसों की बड़ी मतवाली चाल होती है, तो हंसों की चाल एक दूसरे के सामने चल चल करके दिखाते हैं। इतने खो जाते हैं कि बहुत छोटी छोटी क्रियाएं सखाओं के साथ मिलकर के भगवान करते हैं। इसे असंकोच भाव कहते हैं। जब चित्त में असंकोच आ जाए वैष्णवों के साथ भगवान के साथ, तब कौन से रस का आस्वादन होता है? साख्य रस का आस्वादन। उसके बाद वात्सल्य रस का आस्वादन होता है, जिसमें कि लालन पालन की आकांक्षा आती है। कौन सा गुण आता है? लालन पालन करना। जब हम भक्तों को लालित पालित करने का दृष्टिकोण रखते हैं, भगवान को लालित पालित करने का दृष्टिकोण रखते हैं, इसका पालन कैसे किया जाए, इसका पोषण कैसे किया जाए, अभी तो कोई भक्ति नहीं कर रहा, हमें क्या लेना देना, हमारा क्या बिगड़ रहा है? ठीक है, भगवान को नहीं भोग लग रहा है तो हमें क्या लेना देना, पुजारी जाने। जैसे माता यशोदा को कितनी चिंता होती है, वो बुला बुला करके ध्यान करते हैं, ऐसे ही भगवान को भोग लगाने को लेकर के भक्त लोगों को कितनी चिंता होती। रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य एकदम प्रधान है, महाप्रभु के सभी वैष्णवों का वैराग्य बड़ा प्रधान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को एक शिला दिया जिस शिला को लेकर के चैतन्य महाप्रभु बड़े रुदन करते थे, कई बार पागलों की तरह उसको देख देख के रोते थे, तो अश्रुओं से उस शिला का स्नान करा देते थे। 3-1 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने उस शिला को अपने गले में बांध के रखा, उसका नित्य प्रति आराधना करते थे, कृष्ण समझते थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी पर बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने वो शिला दे दिया। जब शिला दे दिया तो रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर कहते हैं, इनकी बहुत अच्छी तरह से आराधना करना, इनको रोज भोग लगाने में संदेश और खाजा खिलाना। क्या खिलाना इनको रोज? संदेश और खाजा, पुरी में खाजा प्रसिद्ध है। तो बोले इनको रोज संदेश और खाजा खिला। अब उनका वैराग्य इतना है कि वो ऐसा भोजन करते हैं जो गाय भी नहीं करती, अब भगवान के लिए कैसे व्यवस्था करें। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, मैं ला करके तुम्हें दिया करूंगा, लेकिन भोग रोज लगा। ये कितनी लालन पालन की वृत्ति है हमारी, तो भगवान के प्रति कहाँ है, भक्तों के प्रति कहाँ है, सिर्फ अपने प्रति लालन पालन की वृत्ति है कि हमें बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। हम शरीर के स्तर पर कितने डूबे हुए जीव हैं, तो हमारे अंदर लालन पालन का गुण है ही नहीं। जैसे माता पिता के अंदर लालन पालन का गुण है तो खुद नहीं खाते लेकिन अपनी संतान को खिलाते, ऐसे ही उन वैष्णवों को वात्सल्य रस का आस्वादन होगा जो दूसरे वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति इस लक्षण को प्रकट कर पाए, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत कहे जा सकते। माधुर्य रस का गुण है सर्वांगीण सेवा, अर्थात प्रत्येक अंग से प्रत्येक अंग की सेवा की जा सकती। बोले माधुर्य रस में भक्तों का इतनी सरलता होती है कि उनमें बिल्कुल भी छुपाव नहीं रहता, जरा सा भी छुपाव नहीं, वो माधुर्य रस के उपासक कहे जा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी तो उस स्तर के उपासक है। तो ऐसे वैष्णवों का सानिध्य कौन नहीं प्राप्त करना चाहता। बोले सनातन गोस्वामी जब विचरण करते हुए एक बार चकलेश्वर महादेव जी के पास चले गए, वहां बैठकर के भजन करने लगे, तो इनके भजन का आनंद इतना अधिक आया, किसको आया? शिवजी को आया। ये तो आनंद में डूबे ही रहते हैं, वैष्णवों के साथ भजन करते हैं, इतना आनंद आया शिवजी को कि शिवजी का बहुत आभार अंदर से प्रकट करने की इच्छा होने लगी। इधर इनको क्या हो रहा है कि वहां मच्छर बड़े, मानसी गंगा के पास मच्छर बड़ा इनको कष्ट दे रहे हैं, ये चलने लगे वहां से उठ करके मच्छरों से डिस्टर्ब होकर। जब जाने लगे तो उसी समय शिवजी इनसे पुकारते हैं, सनातन आप यहां से मत जाओ। अब देखो शिवजी को इनके भजन में भजन को सुनकर के कितना अच्छा लगता है, वैष्णवों के भजन में क्या रस होता है, ये रस जिन वैष्णवों के साथ बैठकर के भजन किया जाए उनके साथ रहने से ही पता चलता है। हमें ये सौभाग्य थोड़ा सा हमारे गुरुजी ने दिया, हम उनके साथ पुरुषोत्तम मास में चतुर्मास के समय में निवास करने का मौका मिला। हमने देखा सारी रात वो पागलों की तरह महामंत्र का जप करते थे, और सारी रात एकदम रो रो करके जप करते हैं, और ऐसा नहीं एक दिन कर लिया, रोज जप करते, और उनके साथ बैठ करके एक अलग ही शक्ति का संचार होता है, एक अलग ही आनंद का। अपने आप आपका हृदय भी रोने लगेगा, जबकि हमारा हृदय तो पत्थर की तरह रहता था, लेकिन अंदर से फिर भी ऐसी हिलोरें उठती थी कि इतना आनंद आता था कि अरे यार क्या फायदा सोने से। महाराज उठते थे तो हार्डली महाराज करीब 12 बजे तक तो जब करते रहते थे, और 12 से 2 ढाई बजे तक 2 घंटे के आसपास मुश्किल सोते थे। तो 2:30 बजे उठ करके उस समय में जब हम वृंदावन में थे तब भी महाराज का ऐसा ही भाव रहता था, और वहां तो सोते ही नहीं थे, सारी रात जागते रहते थे। वैष्णवों के साथ जो भजन है उसका एक अलग आनंद आता है। तो शिवजी स्वयं कह रहे हैं यहां से मत जाओ, बोले प्रभु यहाँ मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। बोले आगे से आपको यहाँ कोई मच्छर परेशान नहीं करेगा। वहां पर फिर उनको कोई मच्छर ही नहीं परेशान करता था, आराम से रह करके उन्होंने वहां पर भजन किया। सनातन गोस्वामी ने किसको आनंद प्रदान किया? शिव जी को, चकलेश्वर महादेव को आनंद प्रदान किया। आज भी वो दिव्य स्थली है। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की बहुत सुंदर लीलाएं हैं, बड़ा इनका विस्तार से जीवन चरित्र है। चैतन्य चरितामृत में भी इसका और वर्णन किया गया। सनातन गोस्वामी बड़े महान वैष्णव हुए। अंत में इन्होंने भगवान के विरह में, पूर्णिमा के समय में, अषाढ़ में इन्होंने शरीर का त्याग किया, भगवत धाम गमन किया। और उस समय में इतने वैष्णवों के ये आराध्य बन गए थे कि बड़े सारे साधु समाज ने अपने सर का मुंडन कराया और एक बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया, मेला मनाया गया एक प्रकार से। इतने महान वैष्णव का भगवत धाम गमन हुआ। उस समय से आज तक उस मेले को मनाया जाता है, जिसको कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, जबकि ब्रजवासी लोग उस मेले को जानते हैं, जिसका नाम क्या है? मुड़िया पूनो का मेला। मुड़िया मतलब मुंडन किया, जिसमें पूर्णिमा के दिन जिस समय में सभी लोगों ने मुंडन किया, कई सारे ब्रजवासियों ने मुंडन किया, कई सारे वैष्णवों ने मुंडन किया। जैसे कोई घर में चला जाता है तो घर के लोग मुंडन करते हैं ना, ऐसे ही वैष्णव लोग सारे संसार के होते हैं। बहुत सारे ब्रजवासियों ने, बहुत सारे वैष्णवों ने मुंडन किया और इनकी शोभा यात्रा निकली और इनका उत्सव मनाया। विचार करो, वैष्णव लोग कितने बड़े समाज के लिए उद्धारक बनते हैं। 500 से ज्यादा साल बीतने को आ गए और आज भी राधा कुंड में ये मुड़िया मेला मनाया जाता है। मुड़िया पूनो का मेला आज भी मनाया जाता है, लाखों लाखों लोग आते हैं। पूरा एकदम पैक हो जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि क्यों मनाया जा रहा है मुड़िया पूनो, इतना जानते मुड़िया पूनो मनाया जा रहा है। इसलिए मुड़िया पूनो में सनातन गोस्वामी की कृपा आज भी बरस रही है और वो लोग आज भी ग्रहण कर रहे हैं। ये इनके इन प्रकार ने इस मेले के बहाने जो कभी नहीं आता, कम से कम वो उस समय राधा कुंड में आ जाता है। और राधा कुंड की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? रूप गोस्वामी ने बताया, राधा कुंड वो स्थान है जिसमें कि इससे श्रेष्ठ दुनिया में ना केवल भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी इससे श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं। वो राधा कुंड का दिव्य स्थल। तो सनातन गोस्वामी की लीला इस प्रकार से संपन्न हुई और रूप गोस्वामी ने भी जब ये देखा कि सनातन गोस्वामी चले गए, उनसे विरह सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने आप को प्रायः कुटिया में एक प्रकार से एकांतिक वास प्रदान किया और फिर अपनी कुटिया से निकलते ही नहीं थे वृंदावन में, और उन्होंने भी वृंदावन में अपने धाम को गमन किया, भगवत धाम को गमन किया, भगवान की लीलाओं में प्रवेश किया। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, इनका दिव्य चरित्र है जो बड़ा अद्भुत है। इन चरित्रों को सुनने का एक ही विशेष लाभ है कि हम इनके प्रति आसक्त होकर के, इनकी महिमा को सुनकर के इनके ग्रंथों का आश्रय लें। क्या करें? इनके ग्रंथों का आश्रय लें, जिसमें कि सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य और रूप गोस्वामी अभिधेय के आचार्य बताए गए हैं। अभिधेय उस क्रिया को कहते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा, जैसे हमारा किसी से संबंध जुड़ा तो संबंध जुड़ने के पीछे कोई उद्देश्य होगा, कोई प्रयोजन होता है, तो उस प्रयोजन की प्राप्ति कैसे करें? बिना संबंध के तो प्रयोजन हो नहीं सकता। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का प्रयोजन है अपने वंश को आगे बढ़ाना, क्या करना? वंश को आगे बढ़ाना, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए उसके लिए? पुत्र चाहिए। तो पुत्र कैसे आएगा फिर? पत्नी के साथ संबंध होना चाहिए, कोई तो पत्नी होनी चाहिए कि नहीं? बिना माँ के संतान हो सकती है क्या? तो पहले किसी स्त्री के साथ संबंध बना करके उसे विवाहिता बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आवश्यकता क्या हुई? संबंध की। उसके बाद पति पत्नी साथ में रहने चाहिए। ऐसा नहीं संबंध हो गया अब जीवन हम नहीं जिएंगे साथ में, तुम अपने घर वो अपने घर, तो संतान हो सकती है नहीं। तो उसमें वैवाहिक जीवन किस प्रकार से जिया जाता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद प्रयोजन की प्राप्ति स्वरूप क्या होगा? उत्तरार्थे भार्याम करिष्यते, पुत्र की प्राप्ति भार्या से आपको हो जाएगी। ऐसे ही सनातन गोस्वामी के ग्रंथों से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? भगवान के साथ संबंध की प्राप्ति होती है। और रूप गोस्वामी के ग्रंथों से उस संबंध को कैसे जिया जाए। जैसे भगवान के साथ हमारा संबंध हुआ तो हम क्या बन गए? क्या बन गए हम? भक्त बन गए। क्या बन गए? भक्त बन गए। जब तक संबंध नहीं हुआ तब तक कैसे भक्त बनेंगे? हम गुरु जी के साथ संबंध हुआ, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, तो हम क्या बने? शिष्य बने। अब उस शिष्य के जीवन को कैसे जिया जाए? शिष्य के जीवन को कैसे जिया जाए ये कौन सिखाएगा? ये रूप गोस्वामी के ग्रंथ सिखाएंगे। इन्होंने हम संसार के जीवों को लालित पालित करने के लिए भक्ति रस से युक्त इन सभी ग्रंथों का लेखन, विशेष ग्रंथों का लेखन। जैसे सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत के ऊपर टिप्पणी किया, उन्होंने टीका लिखा, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखा। सनातन शिक्षा प्रधान है। इन सब ग्रंथों का जब हम आश्रय लेते हैं, जैसे ललित माधव ग्रंथ को लिखा, ऐसे कई सारे अन्य ग्रंथों को लिखा, ऐसे रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से ग्रंथों को लिखा, जिसमें कि कौन से ग्रंथ हैं? भक्ति रसामृत सिंधु है, ऐसे उपदेशामृत है, इन ग्रंथों को लिखा। सनातन गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि आदि को लिखा, बड़े सुंदर ग्रंथ है। इन ग्रंथों को प्रत्येक भक्त को अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए। हम अध्ययन नहीं करते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम केवल शो ऑफ वाले भक्त बने रहते। अब जिस पत्नी के बन जाने के पश्चात भी एक साल हो गया, दो साल हो गया, चार साल हो गया, संतान ना हो तो घर वाले कैसे उसको टोंट मारते हैं? घर वालों की नजर में वो पत्नी पत्नी मानी जाती है एक प्रकार से, ऐसा लगता है ये तो कोई काम की नहीं। ऐसे ही भक्तों के समाज में अगर कोई व्यक्ति इन ग्रंथों का आश्रय नहीं ले पाता और उसके अनुसार भक्ति नहीं करता, तो फिर वही व्यक्ति भक्तों के समाज में उत्पात का कारण। इसको कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते। वो केवल और केवल मनमानी भक्ति में लगा हुआ। इसलिए हम विचार करें हमें कितने साल हो गए भक्ति में आए हुए, कितने साल पहले हमने गुरुजी से जो दीक्षा ली है शिष्य बन चुके हैं, लेकिन हमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया सनातन गोस्वामी और कितने ग्रंथों का अध्ययन किया रूप गोस्वामी, और प्रयोजन के आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति क्या प्रेम है, उनका जीवन चरित्र क्या, उनके ग्रंथ कौन से हैं, कितना हमने उनका आश्रय लिया है। ये सभी छह के छह गोस्वामियों की बहुत विशेष देन है हम सभी जीवों की, तभी हम सच्चे रूपानु कहलाएंगे। लेकिन हम अपने अंदर झांक करके देखें, इन सभी ग्रंथों का सार प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी हमने क्या पढ़ा है? कितनी गहराई से प्रभुपाद जी ने भी उन्हीं ग्रंथों पर अपनी टीका लिख करके दिया, भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद जी ने भी दिया है, उसी पर विस्तार से समझा, उपदेश अमृत प्रभुपा जी ने भी दिया, उन्हीं ग्रंथों सनातन शिक्षा को भी प्रभुपा जी ने दिया, बहुत सुंदर बहुत अद्भुत ग्रंथ। लेकिन हम लोगों ने कितना इन ग्रंथों का अध्ययन किया, समय ही नहीं है हमारे पास, और तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और हमें होश भी नहीं, कोई ऐसा टारगेट भी नहीं कि हमें ऐसा कुछ करना ही है। हाँ, जीवन में फिर कभी भक्ति रस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। फिर परिणाम में क्या होता है, हम इस भक्ति रस से बिछुड़ करके, हम इस भक्ति रस से वंचित होकर के, हम इस भक्ति रस से विमुख होकर के विपथ हो जाते, दूसरे पथ के पथिक बन जाते हैं। फिर हम संसार में क्या करते हैं, कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है, कोई व्यक्ति स्कूल कॉलेज खोलता है, कोई व्यक्ति अस्पताल खोलता है, कोई व्यक्ति गौशाला खोलता है, जबकि हमारे आचार्यों के प्रिंसिपल कितने हैं, चार, प्रमुख रूप से। कि चार प्रिंसिपल कौन से हैं, बुक्स आर द बेसिस, सबसे पहला प्रिंसिपल है, किताबें ही आधार हैं। इसलिए भक्तों का जीवन किताब पढ़ना और किताब बांटना, ये प्रमुख है, बुक्स आर द बेसिस। दूसरा है प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि ही शक्ति है। जब किताबों के आधार पर हम इस मार्ग में लग जाएंगे तो हमारे अंदर शुद्धि आ जाएगी। हम भक्ति मनमाने ढंग से करेंगे तो जीवन भर करते करते मन शुद्ध नहीं होगा। कोई कहे कैसे पता चले कि हम शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, कैसे पता चले कि हम शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया, बोले विषयीर खाई लो अन्न, मलिन होई लो मन। विषयीर व्यक्ति का, भोगी व्यक्ति का अन्न खाने से मन कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है। और बोले मलिन मन की क्या पहचान है, मलिन मनेर नहीं कृष्ण स्मरण, मलिन मन वाले व्यक्ति का कृष्ण स्मरण नहीं होगा, उसका स्मरण क्या होगा, धन का स्मरण होगा, स्त्री का स्मरण होगा, भोजन का स्मरण होगा, निद्रा का स्मरण होगा, निंदा चुगली का स्मरण होगा, लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। अब हम अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देखें कि हमारा मन कैसा है, कितना हमारे मन में कृष्ण स्मरण होता है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा का स्मरण करेंगे, कैसे मेरे को प्रतिष्ठा मिले, झूठी सही लेकिन मिलनी चाहिए, ये पहचान है मलिन मन की। तो आज हम लोगों के अंदर झांक के देखें तो प्रायः हम सभी मलिन मन वाले व्यक्ति। शुद्ध कैसे हो सकते हैं, जब इन शास्त्रों के आधार पर जब हम भक्ति को अंगीकार करेंगे तब हमारा चित्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, अपने आप कृष्ण स्मरण। इसलिए दूसरा सिद्धांत क्या है, प्योरिटी इज द फोर्स, वो अद्भुत क्षमताएं आएंगी कि हम असंभव कार्य कर पाए, वो ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। अभी तो अपने अंदर कोई ताकत ही नहीं। तीसरा सिद्धांत क्या है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, हर चीज को हम भगवान की सेवा में उपयोग में ला पाए। आज तो हम बहुत सारी चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग में ला ही नहीं पाते, थोड़ा बहुत ला पाते, हर सेकंड को हम भगवान की सेवा में उपयोग में ला पाए। खून की एक एक बूंद को अपने जीवन की भगवान की सेवा में ला पाए, एक एक इस खून से अर्जित पैसे का, एक एक पैसे का उपयोग हम भगवान की सेवा में ला पाए। आज तो हम भगवान की सेवा कई बार पैसे से करते हैं, लेकिन साथ में अपने विषयों के लिए भी खुला पैसा बहाते हैं, उसमें कोई व्यक्ति विचार नहीं करता, ये अननेसेसरी पैसा वेस्ट हो रहा है, इस पैसे से तो हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते। अपने इंद्रिय विषयों के लिए लोग कितने पैसे को बर्बाद करते हैं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। अपने घर में टाइल्स बढ़िया लगे हुए हैं, फिर भी कुछ लोग सोचते हैं इनको उखड़वा के चेंज कर देते। क्यों? पैसा कुल कुल आ रहा है, इतना ज्यादा पैसा है, उनको यूटिलाइज करने का अकल ही नहीं कि पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाए। इसलिए संसार में जहां से प्रतिष्ठा मिलती है उसको लोग पैसा पकड़ाते रहते हैं, जो सम्मान देते। भक्त लोग तो कई बार सम्मान नहीं देते, इसलिए लोग यूटिलाइज नहीं करते अपनी चीज। हमारा पेट बहुत सस्ते में भर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं समझ पाते। हम एक बार यहाँ बद्रीनाथ गए थे तो एक फैमिली हमारे साथ आया था, तो उनका एक छोटा सा बच्चा कहता मेरे को नान खाना है, नान खाना है, नान। तो प्रभु जी बोले, प्रभु जी आप इनको खिला के ला सकते हैं क्या? मतलब चलो लेके आते, हम चले गए। तो वो बच्चे ने खुद ही जाकर के ऑर्डर फॉर्डर दे दिया और आकर के बैठ करके उसने पा लिया। बिल मेरे को पे करना था, मैं बोला कि होगा 50 रुपए बिल। वहां जाकर के पता चला तो कितना बिल, बोले 600 रुपए। कितना बिल? 600 रुपए। मेरा तो सर एकदम से घूमने लग गया। अब ये बिल उसने भी देखा, बिल तो उसने ही ले लिया रसीद। तो मैंने कहा ये बिल मेरे को क्या करना प्रभु जी? उसने फाड़ के फटाक से छोटा सा बालक ही था फेंक दिया उसने। उनको तो समझ रहा था प्रभु जी को थोड़ा झटका लगा है। प्रभु जी जाके मेरे पिताजी को दिखाएंगे 600 रुपये बिल आया, इसलिए उसने बहुत चालाकी से उस बिल को फाड़ के फेंक दिया। तो ऐसी ट्रेनिंग बच्चों के वो है, क्योंकि बड़ों ने भी कभी ऐसा कंट्रोल जीवन जिया नहीं, इसलिए छोटा सा भी कोई बोले ये विशेष वह है, क्या बोलते हैं आजकल बच्चे लोग, चॉकलेट खाते हैं, ये विशेष चॉकलेट है, कितने की? 300 रुपए की चॉकलेट। बाप रे। एक बार मैं गोविंदाज में चला गया था, वहां मधुसखा प्रभु जबरदस्ती ले गए वृंदावन में। बोले प्रभु जी क्या लेंगे? मतलब जो इच्छा हो खिला दे यार। बैठ गया, मैं बोला क्या ऑर्डर दिया? बोले पराठे का। मतलब कितने का एक पराठा? बोले रहने दो प्रभु जी, कोई बात नहीं, खा लो आप। मतलब नहीं बताओ तो सही कितने का? बोले 90 रुपए का। मेरे से बैठा ही नहीं गया, मैं उठ करके चल पड़ा, 90 रुपए का एक पराठा। हे भगवान। तो हम सभी लोगों को कई बार ऐसी परवाह ही नहीं होती, पैसा आया तो ऐसा सोचते सब हमारे लिए ही है, इस शरीर को बस कंफर्टेबल, जो इच्छा हो सब इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ये पैसा हमें मिला है बस। बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है जो हमें विषयों की ओर लेकर के जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी हमारे जीवन में ये सिद्धांत आया ही नहीं। कौन सा सिद्धांत? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अगरबत्ती थोड़ी महंगी आएगी तो नहीं खरीदेंगे, भगवान के लिए भोग लगाने के लिए 50 बार सोचेंगे, लेकिन खुद के लिए छोटी सी चॉकलेट चाहे कितनी भी महंगी आए, पर एक एक टैग मार्क बन जाता है हमारे जीवन का, हम उसी जीवन को जीना चाहते। हाँ हाँ तो एक नई नई इंफॉर्मेशन ये भक्त लोग दे रहे हैं, लिन चॉकलेट आती है 400 रुपए की, बताओ भाई भक्त। चालीस ग्राम बस, हे भगवान कैसी बुद्धि है बताओ, 400 रुपए कमा के देखो। हाँ मेरे पिताजी एक बार जलगांव से आ रहे थे, तो मैंने कहा कि रिजर्वेशन निकाल देता हूँ, उस समय 300 रुपए का रिजर्वेशन आता था। बोले अगर हम जनरल से चले जाएंगे तो एक रात जागने पर हम 300 रुपए कमा लिए एक प्रकार से। कुछ लोग कंजूस होते हैं, कुछ लोग खुले दिल वाले होते हैं विषयों में, लेकिन दोनों ही बेड़ा गर्क को प्राप्त होते हैं अगर भगवान के सेवक नहीं होते। भगवान का सेवक होना चाहिए, भगवान के लिए हर चीज को यूटिलाइज करना चाहिए, यहां तक कि कचरे को भी भक्त लोग यूटिलाइज कर लेते हैं भगवान की सेवा। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, ये लक्ष्य होना चाहिए। और चौथा प्रिंसिपल हमारे आचार्यों ने क्या दिया है, हमारा लक्ष्य संसार में क्या होना चाहिए? चौथा, प्रीचिंग इज द एसेंस। क्या लक्ष्य होना चाहिए? प्रीचिंग इज द एसेंस, मुख्य रूप से प्रचार ही सार है। संसार में हम कुछ भी करें, अगर घुमा करके या सीधा उसका लक्ष्य यदि प्रचार नहीं है, जैसे हॉस्पिटल खोला तो हॉस्पिटल का लक्ष्य दो हो सकता है, एक तो पैसा कमाना, एक प्रचार भी हो सकता है। कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए आया, उसके माध्यम से हमने उसको प्रीचिंग करना चालू कर दिया, वो भक्त बन करके जाए, ये भी लक्ष्य हो सकता है, या पैसा कमाना लक्ष्य हो सकता है, गौशाला खोला उसका भी लक्ष्य प्रचार हो सकता है, कई सारे लोगों को सेवा में लगाया जा सकता है, या फिर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, गायों को दिखा करके अपना पेट भरा जा सकता है, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं संसार में, स्कूल खोला उसका भी लक्ष्य प्रचार आदि हो सकता है, अन्यथा उसका पेट भरना भी लक्ष्य हो सकता है। हम अपने आप में इस लक्ष्य को कितनी तीव्रता से निर्धारित करके चल रहे हैं, इसका पता तब चलेगा जब हम पहले वाले प्रिंसिपल्स पे कितने खरे हैं। हम पहले वाले प्रिंसिपल्स पे खरे नहीं है, हमारी चित्त की शुद्धि हुई नहीं, कृष्ण स्मरण है नहीं, तो प्रचार ही सार है, हमारा लक्ष्य नहीं बन सकता। इसलिए प्रचार ही सार है, ये हमारा चौथा प्रिंसिपल है। हमारे आचार्यों ने रात दिन केवल और केवल प्रचार के लिए ही जीवन जिया, और ये प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में खुद आचरण में हो। पीछे गोस्वामी आज भी प्रचार कर रहे हैं, आज भी इनके ग्रंथों के माध्यम से सर्वत्र प्रचार फैल रहा है, क्योंकि इनके आचरण ऐसे थे, दिव्य आचरण ऐसा, जो भी व्यक्ति इनके नजदीक आता, धीर हो या अधीर हो, हर व्यक्ति प्रभावित होकर के जाता। इसलिए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की हम अत्यधिक ऋणी हैं, जिन्होंने हमें भक्ति रस को चखने का एक सुंदर स्वर्णिम अवसर दिया है प्रभुपाद जी के माध्यम से। हम चाहें तो इस रस का आस्वादन कर सकते हैं, नहीं तो पुनः हम संसार की उन चेतनाओं में चले जाएंगे जो चेतनाएं जीव को प्रदान, जीवत्व तो प्रदान करती हैं, लेकिन उस चेतना में भगवत प्राप्ति संभव नहीं। वृक्ष की भी चेतना है, लेकिन उसकी चेतना कैसी है? आच्छादित चेतन जीव है। जीव तो है, लेकिन उसकी चेतना अत्यधिक मात्रा में ढकी हुई है। उसको कोई काटे, उसको कोई डंडा मारे, पत्थर मारे, वो कुछ नहीं कर सकता, होशी नहीं। कैसी चेतना है? आच्छादित चेतना। उससे श्रेष्ठ होती है संकुचित चेतना। कौन सी चेतना? संकुचित चेतना, जिसमें कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सर्प आदि हैं, इन सब में कैसी चेतना पाई जाती है? संकुचित चेतना पाई जाती है। आच्छादित से थोड़ी सी ज्यादा है, इतनी अकल नहीं है कि अपने परिवार का भी पालन पोषण कीड़े मकोड़े कैसे करें। कई बार सर्पिनी अपने ही बच्चों को खा जाती है। वो इनकी चेतना में इतना भी संबंध ज्ञान नहीं है। कई बार कीड़े मकोड़ों को देख इधर भाग रहे हैं, फिर वो फिर से वापस उसी साइड में आ गए, फिर चले गए उधर उधर साइड में, फिर से वापस उसी साइड में आ गए। कोई जीवन का कोई दिशा ही नहीं होती। ये कौन से जीव कहलाते हैं? अच्छा, संकुचित चेतन जीव। इनसे श्रेष्ठ चेतना होती। देखो, चेतना का भगवान कृपा करके वृद्धि कर रहे हैं। इससे अधिक चेतना होती है जानवरों के अंदर, जैसे गाय है, बंदर है, कुत्ते बिल्ली आदि हैं, पक्षी हैं, इनके अंदर चेतना अधिक पाई जाती है। इसको मुकुलित चेतन जीव कहते हैं। कैसे जीव है? मुकुलित। एक अपने बच्चे के लिए, अगर एक बच्चा बंदर का कहीं फंस जाए, सैकड़ों बंदर आ जाते हैं उसकी रक्षा करने। कितना उसमें मेरा तेरा है कि नहीं? उनमें गाय के बछड़े में, गाय के अंदर कितना प्रेम होता है। बंदरों में भी काफी चेतना का विस्तार, ऊपर से ऐसे दिखाएगा जैसे कुछ पता ही नहीं इसको। और जैसे ही आप प्रसाद ले रहे हो तो आप देखने लग जाओगे ना, तो दूसरी ओर देखेगा, ऐसे दिखाएगा मैं तो मेरा तो ध्यान ही नहीं है आपकी थाली पर। और कितना चतुराई के साथ आकर के और आपकी रोटी लेकर के चला जाता और आपको पता ही नहीं चलता। एकदम नाटक करने में एक नंबर का माहिर है, इतना एक्सपर्ट होता है। तो चेतना वृक्ष की अपेक्षा, जानवर रेंगने वाले जीवों की अपेक्षा कितनी ज्यादा है। प्रायः इंसान के जैसी चेतना है उसमें, बहुत अकल होती है उसको। देखो बच्चे को कैसे वो लिपटा करके चलते, चलना होता है तो ऐसा नहीं कि तू रह गया तो कोई बात नहीं, तुरंत पकड़ करके छाती से लगा कर चलते। इतने पालन पोषण की वृत्ति है। उससे श्रेष्ठ चेतन होते हैं विकसित चेतन। कौन से जीव? विकसित चेतन, जिनकी चेतना और प्रकाशित कर दी गई, जिनकी चेतना में और विकास दे दिया गया। वो मनुष्यों में पाई जाती है। वो चेतना किन में पाई जाती है? मनुष्यों में। बोले इस चेतना में भी जीव इस शरीर के बंधन में फंसा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन की विवशता में फंसा हुआ है, लेकिन चेतना का इतना विकास हो गया है। अब पहले आत्मा चेतना शक्ति किस में होती है? आत्मा की। ऊपर से ये शरीर से ढकी रहती है, शरीर के अंदर आत्मा होती है। तो देखो भगवान कितना चेतना का विकास करते 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 कहां तक लेके आ गए, आपको मनुष्य शरीर दे दिया। अब हम चाहें तो ऐसे वैष्णवों का सानिध्य प्राप्त करके इसको पूर्ण विकसित कर सकते हैं। कैसी बना सकते हैं? पूर्ण विकसित हो सकते हैं। जैसे ही पूर्ण विकसित हुए नहीं, हमारा ये शरीरों का बंधन कटा नहीं। शरीर के इस बंधन को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस बंधन को काटने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? पूर्ण विकसित होने की आवश्यकता है बस। अभी कितने हैं विचार करो आप, किसी वृक्ष के लिए कितना असंभव है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से निकलना, इस दैहिक बंधन से बाहर निकलना, क्योंकि चेतना कैसी है? जड़ चेतना है, आच्छादित चेतना। उनको कितना लंबा समय व्यतीत करना पड़ेगा इस मनुष्य शरीर तक आने के। इस मनुष्य शरीर में प्रायः हम मुक्त हैं, हम प्रायः मुक्त हैं, थोड़ा सा जोर लगाया नहीं कि हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते। वो जोर क्या है? अपनी चेतना को पूर्ण विकसित करना, अर्थात केवल भक्ति बची है बस आने के लिए, और कुछ नहीं। भक्ति कैसे आएगी? भक्तों के सानिध्य से, इन गोस्वामी आचार्यों के सानिध्य से, इनके ग्रंथों के सानिध्य से, इनके इस जीवन चरित्र के सानिध्य से पूर्ण विकसित हुए नहीं और हम संसार के सब भव बंधन से मुक्त हुए। अन्यथा पुनः फिर उसी आच्छादित चेतन अवस्था में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ हमें इतना प्रयास करना अवश्यम भावी, ये करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो नहीं निकल सकता। तो हम सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन सभी छह गोस्वामियों के ऋणी हैं। इनके जीवन चरित्रों का हम सभी बहुत अच्छी तरह से अंगीकार करें, इनके ग्रंथों को अंगीकार करें, यही पूर्ण विकसित होने की कुंजी है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आज तन्मय जी के साथ उनके पिताश्री भी साथ साथ बैठे हुए, तो तरुण प्रभु का, तन्मय जी का, परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि ये परिवार और इसके संबंध में आने वाले सब लोगों को ये पूर्ण विकसित चेतना की ओर लेके जाएंगे, इस उत्तरदायित्व को निभाएंगे। धन्यवाद। रुक्मणी विठल प्रभु का भी धन्यवाद, इन्होंने भी अपने एक अच्छे पुत्र को जन्म दिया है और ये भी उसको, ये सब प्रभु को भी अच्छी भक्ति की ओर लेकर के जाएंगे, उसके दर्शन हो रहे हैं आज। और शकुंतला माता का भी जो कथा सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद, स्मृति का भी, नैन्सी का भी धन्यवाद जो रोज कथा सुनते हैं, नरेंद्र प्रभु का भी धन्यवाद और योगिता शिरसोले माता का भी धन्यवाद कथा सुनने के लिए, हरे कृष्णा। सुश्री माता जी का भी धन्यवाद, अर्जुन प्रभु जी का भी धन्यवाद। अर्जुन प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, आप अच्छे भक्त हैं, आपका पूरा परिवार बहुत अच्छा भक्त है, मैं चाहता हूँ ऐसे ही परिवार और आप प्रचार करके बनाएं और आने वाले समय में आपको, आपके पुत्र को बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करना है। और आदित्य प्रभु का भी धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद आदित्य के, और अमल प्रेम प्रभु जी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद, शरद कुमार प्रभु का भी धन्यवाद, राजा रामचंद्र प्रभु का भी धन्यवाद। तरुण प्रभु कुछ उंगली दिखा रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है। और सुश्री माता जी का भी धन्यवाद, मनोज प्रभु का भी धन्यवाद, भजन रहस्य प्रभु आज दर्शन नहीं दे रहे, तो अमृत गंगा माता का भी धन्यवाद, रवि प्रभु का भी धन्यवाद, राकेश राय जी का भी धन्यवाद, इस्कॉन बोकारो से राकेश राय जी हमें सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। नेहा माता जी का भी धन्यवाद, कृष्णा प्रभु का भी धन्यवाद। ये अहमदास कौन है? मधुसका दास अहमदास कौन है ये? ओके, अनिकेत प्रभु का भी धन्यवाद, अश्वनी माता जी का भी धन्यवाद, अमोल प्रभु का भी धन्यवाद कथा श्रवण करने के लिए। अमोल प्रभु अभी आए या पहले से ही सुन रहे थे? अच्छा, पहले से सुन रहे थे। कृष्णा, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार, जो भक्तों का नाम लेना छूट गया उनका भी आभार। हरे कृष्णा, हरि बोल। इधर बैठे हुए भक्तों का भी सबका धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। तरुण प्रभु से निवेदन है, शीघ्र अति शीघ्र आप उपस्थित हो जाइए यहाँ पर। आप आने वाले थे, अभी तक आप पधारे नहीं है। और आपका हार्दिक स्वागत है। तन में प्रभु विजयी घोषित हो रहे हैं, अपना वी का सिंबल देखे। हरे कृष्णा, मधुसका प्रभु के साथ में सभी भक्तों का धन्यवाद, जो भी भक्त लोग गोवर्धन मंदिर से कथा सुन रहे। हरे कृष्णा, राम जी का धन्यवाद मनोज प्रभु। हरे कृष्णा, राम कैसे हो? इन्हीं का कोई प्रश्न नहीं? कोई उत्तर नहीं। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा, अर्जुन प्रभु का प्रश्न है ना? इयरफोन? यस प्रभु। हरे कृष्णा, अर्जुन प्रभु अनम्यूट कीजिए अपने को।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम।
धन्यवाद प्रभु जी।
प्रभु जी, मुझे एक रस उसमें है, बात्सल्य रस में जो गुण है वो बता दीजिए, वो थोड़ा मुझे सुना नहीं मिले।
लालन पालन का गुण,
लालन पालन, बस यही यही स्मरण नहीं आ रहा था, बस सुनने में थोड़ा होगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, ये पूछना था। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण,
हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद।